समय सार लेक्चर नंबर 677 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं
नमो आयरियां नमो वैज्ञायां नमो लोए
सवसाहुनं नमः समय साराय
स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवलीवणिदम्।
यह कुंद कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और हम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के गाथा नंबर 308 से 311 आज देखने जा रहे हैं। हमने कलश 193 और 194 को देख लिया। हम पृष्ठ क्रमांक 3 पर आए हैं। अभी हम यहाँ से पहले प्राकृत, बाद में संस्कृत और बाद में गुजराती गाथाओं को पढ़ेंगे।
दवियं जम उपजै गुणे हितं तेहि जान सुवर्णनम् जल कणयादि दुपजयेहि कणयम् अनन्नमिह जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामा दुदेशिया सुते तं जीवमजीवं वा तेहि मणन्नं वियाणाहि णकुदोचि विपन्नो जम्मा कज्जं न तेन सो आदा उपादे दिन किञ्चिवि कारणमवितेन सखोयि कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि उपपच्यन्ति अनियमा सिद्धि दुणदीसे अन्ना द्रव्यं यद् उत्पद्यते गुणैः तत्तैर्जानिहि अनन्यत् यथा कटकादिभिः तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शितः सूत्रे तं जीवमजीवं वा तैः अनन्यं विजानीहि न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात् कार्यां न तेन स आत्मा उत्पादयति न स किञ्चिदपि कारणमपि तेन न स भवति कर्म प्रतीत्यकर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्यकर्माणि उत्पद्यन्ते च नियमात् सिद्धिस्तु न दृश्यते अन्या द्रव्य उपजे जे गुणोति तेति जाननन्यते जमग्रगतमा कटकादिपर्या योति कनक अनन्यचे जीव जीवना परिणाम ने दर्शाविया सूत्रो मही ते जीवगर તેથી નાત્મા કાર્ય છે, ઉપજાવતો નથી કોઈને, તેથી ન કારણ પણ ઠરે, રે કર્મ આશ્રિત હોય કરતા, કર્મ પણ કરતા તણે આશ્રિતપણે ઉપજે, નિયમથી સિદ્ધિ નવદીશે દિશે, જે દ્રવ્ય ઉપજે જે ગુણોથી, તેથી જાણ અનન્ય છે, જમ જગતમાં કટકાદિ પર્યા યોથી કનક અનન્ય છે, જીવ અજીવના પરિણામ જે દર્શાવ્યા સૂત્રો મહી, તે જીવ ગર જીવ જાણ અનન્ય તે પરિણામ, ઉપજેન આત્મા કોઈ થી તે તીન આત્મા કાર્ય છે, ઉપજાવતો નથી કોઈને, તેથી ન કારણ પણ ઠરે, રે કર્મ આશ્રિત હોય કરતા, કર્મ પણ કરતા તણે આશ્રિતપણે ઉપજે, નિયમતી સિદ્ધિ નવ બીજી દિશે.
દેખો યે બહોત હી સમયસાર કી મહત્વપૂર્ણ ગાથા હે 308 સે 311 કી. અનેક બાર ઇસકા ઉદ્ધરણ ભી દિયા જાતા હે, હમ ઉસકા અર્થ દેખતે હે, પહેલે ગાથાઓં કા ગાથાર્થ દેખતે. યદ દ્રવ્યમ, જે દ્રવ્ય ગુણૈહી, જે ગુણોથી ઉત્પદ્યતે ઉપજે છે, તૈહી તે ગુણોથી તત તેને અનન્યત જાનીહી, અનન્ય જાન. ને દ્રવ્ય જિસ ગુણ સે ઉપજતા હૈ ઉસ ગુણ સે ઉસે અનન્ય જાન. યે દ્રવ્ય કે ગુણ, ગુણ કે દ્વારા ઉપજતા હૈ દ્રવ્ય, ક્યા કહેના ચાહતે હૈ? હા નલિનભાઈ, હા ગુણો કા સમૂહ દ્રવ્ય. તો યહાં એસા ક્યાં ક્યું કહા કે જિસ ગુણ કે દ્વારા ઉત્પન્ન હોતા હૈ? દ્રવ્ય કભી ઉત્પન્ન હોતા હૈ ક્યા કિસી અપેક્ષા સે? નહીં. હા બિલકુલ સહી હૈ, પર્યાય અપેક્ષા સે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન હોતા હૈ. તો યહાં ગુણ યાને પર્યાય સમજના હો. તો દ્રવ્ય જિસ પર્યાય રૂપ સે ઉત્પન્ન હોતા હૈ, उसके साथ वह अनन्य है, एकमेक है, उससे भिन्न नहीं है, जुदा नहीं है, पृथक नहीं है.
अनन्य का अर्थ
अन्य नहीं,
अनन्य अनन्य.
आप दृष्टांत सुनोगे ना आगे का तो ख्याल में आएगा. यथा जेम है क्या यह
इह चाहिए अनन्य अनन्यत
अनन्यत, अनन्यत इह जेम इह यानी जगत में हम कहते ना इह लोक परलोक कहते ना यह यानी आ जगत में जगत में कटकादि भी पर्याय ही तु. देखो पर्याय शब्द आ गया यहाँ पर और कटक का अर्थ क्या होता है? हाँ सोना. तो कहते कड़ा आदि पर्यायो थी कटका भी, कटकादि भी पर्याय ही यानी सोने के पर्यायों से. कड़ा आदि पर्यायो थी कनकम सुवर्ण. अच्छा कटक यानी यहाँ कड़ा लिया, सॉरी सॉरी कटक का अर्थ है कड़ा लिया.
नहीं कटक का अर्थ ही कड़ा है.
हाँ और कनक यानी वो सोना. और कटक उसके सेना को भी कहते ना कटक सैन्य. कड़ा आदि पर्याय होती सुवर्ण अनन्यत अनन्य छेतेम जैसे सोने का कंगन है, हार है, अन्य अन्य अवस्थाएं है, तो सोना उससे अनन्य है, उससे भिन्न नहीं है, वो सोने की ही अवस्था है। जिस समय वो जिस अवस्था रूप से परिणमता है, उस समय वो उसी रूप है। सोना किसी न किसी रूप में विद्यमान होगा ना। हम सोना लेने गए, हमने बोला हमें कोई भी उसकी अवस्था नहीं चाहिए, हमें ना बंगड़ी चाहिए ना हार चाहिए, तो वो क्या देगा हमें? हाँ, बिस्किट देगा, वो अवस्था हुई कि नहीं हुई? तो बिना अवस्था इसीलिए कहते जे द्रव्य जे गुणों थे, यानी जिस पर्याय रूप से उपजता है, यानी द्रव्य जिस अवस्था रूप से विद्यमान है, तेने अनन्य जानते थी, तेने वो द्रव्य उस समय उस अवस्था से अनन्य है, वो द्रव्य की ही वर्तमान अवस्था है, द्रव्य की अवस्था है, तो द्रव्य अपनी अवस्था से अनन्य होता है। पहले समझाने के लिए उसको भेद करेंगे, उसको उसमें है ही नहीं कहेंगे, जो जहाँ जो अपेक्षा है उसको बराबर समझना। यहाँ कौन सी अपेक्षा चल रही है? जिस द्रव्य की जो पर्याय है वह उस पर्याय के साथ अनन्य है, यानी जीव अपने पर्यायों के साथ अनन्य है और अजीव द्रव्य अपने पर्यायों के साथ। परंतु हम तो इतने भोले कहो या स्याने हैं कि अजीव के पर्यायों के साथ हम अनन्य ऐसा समझ लिया, नहीं समझते मैं काली हूं अभी क्रीम लगा के गोरा होना है। क्या कहते हैं, जे द्रव्य जे गुणों थी उपजे छे, एक गुणों थी उपजे छे, इसका अर्थ समझ में आया ना? हाँ, पर्याय अनेक जगह पर्याय के लिए भी गुण कहते हैं। तो द्रव्य का उपज ना कहो या उस पर्याय रूप से उपज ना कहो, एक ही बात है। हम कहते हैं ना पर्याय उपजती है और पर्याय विनष्ट होती है, परंतु नय का अगर कथन सही देखेंगे, क्योंकि नय तो पूरे द्रव्य को देखता है, तो पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उपजता है और पर्याय की अपेक्षा द्रव्य विनष्ट होता है। वो अपेक्षा वाली, वो अपेक्षा लगाने को भूलना नहीं। अब यदि ऐसा कहें द्रव्य ही उपजता है, ही मत लगाओ, परंतु अपेक्षा के साथ वो चलेगा। तो कहते जे द्रव्य जे गुणों थी उपजे छे, ते गुणों थी तेने अनन्य जान, जेम जगत मां कड़ा आदि पर्यायों थी सुवर्ण अनन्य छे तेम। अब 309 नंबर की गाथा का अर्थ करते हैं। जीवस्य अजीवस्य तु, जीवने अजीवना ये परिणामाः तु, जे परिणामो कैसे, जे परिणामो सूत्रे दर्शिताः, सूत्रमा दर्शावे छे। क्या कहते हैं? अब यहाँ ये बात बता रहे हैं, जैसे सुवर्ण अपनी अवस्थाओं से अनन्य है, कड़ा आदि पर्याय उनसे अनन्य है, अब जीव और अजीव पर घटित कर रहे हैं, तो जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, ये सूत्र में बताए, ये डालने की क्या आवश्यकता थी? सूत्र किसे कहते हैं? गणधर द्वारा जो रचित है उसको सूत्र कहेंगे, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उसके वाणी के अनुसार जो आगम की रचना हुई है उसको हम सूत्र कहेंगे, सिद्धांत कहेंगे। तो सूत्र में बताए हैं, ये शब्द डालने की क्या आवश्यकता थी? जिनेंद्र भगवान ने कहा एक बात, और जो अपने मन से ये जीव की पर्याय ऐसे कहेंगे, बात क्या है, कोई कहेगा ना ये जीव की जीव जीव की पर्याय से अनन्य है अपनी पर्याय से, तो कहेंगे ये गोला काला वो जो है ना वो जीव की पर्याय है, तो वो उससे अनन्य है, क्योंकि अपने मति कल्पना से हम कोई भी पर्याय किसी भी द्रव्य को जोड़ देंगे ना, अज्ञानी को क्या है, कल्पना ही तो करना है उसको। इसलिए कहते हैं सूत्र में बताए हुए, ये जिनेंद्र भगवान ने जो बताए, जिस जीव की जो पर्याय जैसी बताई है उसकी बात यहाँ कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, कि जीव और अजीव के जे परिणाम जो है, जीव अने अजीवना जे परिणामो सूत्रमा दर्शावे छे, दर्शाव्या छे, तई ही ते परिणामो थी तम जीवम अजीवम वा ते जीव अथवा अजीव ने अनन्यम विजानी ही अनन्य जान। देखो आचार्य हमें कह रहे तो ऐसा जान करके, जाने ने ऐसा निर्णय कर, ये अपने निर्णय की बात है ना। अभी बात हमने पढ़ी थी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि जिसको निर्णय नहीं है उसको वो उपयोग अंदर ले जाना, खींचना, क्या करना, ध्यान करना, वो उसके नहीं हो सकता। वहाँ कहता है जिसने नहीं जाना परंतु आगम से जानना और सही निर्णय करना भी जानना होता है, और जब ऐसा जाना जाता है तभी उसका वो ध्यान सही हो सकता है। हाँ नहीं पन क्या कहा पहले, ते परिणामों थी जीव अनन्य छे अने अजीव अनन्य छे, एम पहला लीधु ने, पहला शू कीधु तो जीव ने अजीव ना जे परिणामों, ते परिणामों थी जीव अथवा अजीव ने अनन्य जान, एने जीव ना परिणामों थी जीव ने अनन्य जान, अजीव ना परिणामों थी अजीव ने अनन्य जान, ऐसे शिष्य को ये हमें आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं। यस्मात उसका कारण कहते हैं, कारण के कुतश्चित अपि कोई थी न उत्पन्न उत्पन्न थयो नथी, तेन तेथी सह आत्मा ते आत्मा कार्यम न कोईनु कार्य नथी। कार्य किसको कहते हैं, जो उत्पन्न हुआ है उसको कार्य कहेंगे, तो आत्मा किसी के द्वारा भी उत्पन्न हुआ नहीं है, तो वो किसी का भी कोई नो कार्य नहीं का ना, वो किसी का भी कार्य नहीं हो सकता। किश्चित अभी अने कोई ने किंचित अभी किश्चित अभी कैसा लिखा, कुतश्चित अभी कुतश्चित अभी उत्पन्न हो यस्मात कारण तेने उत्पाय तेने किंचित अभी, किंचित कहा है ऊपर,
किंचित चाहिए
वो च के बदले किंचित,
ये शिरो के बदले में यहाँ चाहिए
ग और च,
नहीं नहीं ऊपर है नहीं,
हाँ वो च है नीचे, हाँ शिरो जैसा लिखा है ना उसके बदले वो यहाँ करना क क ग ग वाला नहीं, च च च च यहाँ वाला किंचित अपि, अने कोई ने न उत्पादयति उपजावतो नथी तेन तेथी सह एटले ते एटले कौन, आत्मा कारणम अपि कोईनू कारण पण नथी। ये सुनकर कुछ याद आती कोई शक्ति आपको, हाँ अस्तित्व, हाँ शक्ति की बात, हाँ अकार्य कारणत्व, किसी का कार्य नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है। देखो फिर पढ़ते अर्थ को, ये पहले क्या बताया, अपने अपने परिणामों से अनन्य जान, जीव को अपने परिणामों से अनन्य जान और अजीव को अपने परिणामों से अनन्य जान, कारण के कोई थी उत्पन्न थयो नथी तेथी ते आत्मा कोईनु कार्य नथी, अने कोईनु उपजावतो नथी तेथी ते कोईनु कारण पण नथी। आगे नियमात नियम थी कर्म प्रतीत्य कर्मणा आश्रये कर्म ने अवलंबीने करता હોય છે, નિયમાત કર્મ પ્રતિત્ય કરતા, એને નિયમથી કર્મના આશ્રયને આશ્રયે કર્મને અવલંબીને કરતા હોય છે, તથા ચ તેમજ કર્તારમ પ્રતિત્ય કર્તાના આશ્રયે કર્માણી ઉત્પદ્યતે ઉત્પદ્યંતે, અનેક વચન હે ને, કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે। એ કિસ કર્મ કી બાત હૈ, હા મોનીએ કી, હા कार्य करता और उसका कर्म, हम स्कूल में सीखते थे ना, राम ने आम खाया, राम करता हुआ, आम उसका कर्म हुआ और वो खाया उसका क्रियापद हुआ, हाँ तो इस कर्म की बात है। तो जो जिसका कार्य है ना, कर्म ना आश्रय करता होए छे, यानी कर्ता के अनुसार कार्य होता है, कारण के अनुसार कार्य होता है, जैसे कार्य है उसके अनुसार कारण, इस तरह से उसको कर्ता और कर्म ऐसा उसमें लगाया, कर्ता कर्म की बात लगाई यहाँ पर। क्या कहते हैं, कर्मना आश्रय कर्ता होई छे तेमज कर्ताना आश्रय कर्म उत्पन्न थाय छे, अन्यातु बीजी कोई रीते सिद्धि कर्ता कर्मनी सिद्धि न दृश्यते जोवामां आवती नथी, ये कर्ता कर्म की सिद्धि अन्यथा नहीं पाई जाती। अब टीका में इसको और समझाएंगे और फिर गुरुदेव उसको और खोल कर बताएंगे, क्योंकि गुरुदेव की भी वो बहुत बार इसका इन गाथाओं पर उन्होंने प्रवचन भी किए हुए हैं। टीका, ये क्रमबद्ध की बात यहां से निकली है इन गाथाओं में से, પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ એવા પોતાના પરિણામોથી ઉપજતો થકો જીવ જ છે, અજીવ નથી. મૂળ સંસ્કૃતમાં શબ્દ ક્રમ નિયમિત આયા હે. જીવઃ તાવત ક્રમ નિયમિત આત્મપરિણામાત ઉત્પત્યતે જીવ એવ એસા કુછ હૈ ઉસમે. મેં નિકાલ કે બતાતી હું. એ ક્રમ નિયમિત શબ્દ હૈ, ઇસલિયે ઉસ પર ભી ઝઘડા ચલતા હૈ. દેખો આપને ક્રમબદ્ધ કહાં સે નિકાલા, યહાં ક્રમ નિયમિત હૈ ના, અર્થ ઉસી કા વહી નિકલતા હૈ. ક્રમબદ્ધ પર્યાય કી સિદ્ધિ કૈસે હોતી હૈ, ઉસકે લિયે ઇન ગાથાઓ કા આધાર બહોત મહત્વપૂર્ણ હૈ. वहाँ ऐसा वाक्य है, जीव तावत क्रम नियमित आत्म परिणामात उत्पद्यमान जीव एव न अजीव. यानी जीव अपने आत्म परिणामों संस्कृत है.
बारह नंबर के पृष्ठ पर है बोल रहे हैं.
हाँ देखती हूँ मैं. हाँ देखो देखो देखो, अच्छा वो आपने बताया. જીવો હિ તાવત ક્રમ નિયમિત આત્મ પરિણામે હિ ઉત્પદ્યમાનો જીવ એવ ન અજીવ. ના જીવ હુઆ ને તો ના જીવ એકત્ર કરના, ન અજીવ હૈ વો. એકઠા લિખને સે ન અજીવ હોતા હૈ ઉસમે સે. ક્રમ નિયમિત હૈ શબ્દ. દેખો થોડા થોડા યાદ થા. देखो अभी यहाँ पर आते हैं, फिर हम टीका के पहली लाइन में चार नंबर का पृष्ठ. प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवा पोताना परिणामों थी उपजत थको. जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, यानी द्रव्य अपने पर्याय रूप से उत्पन्न होता है. पर्याय की अपेक्षा देखिए ना, हमने उपजत थको जीव छे अजीव नथी. यानी जीव कभी भी कितने भी परिणमन करे तो अपने पर्याय रूप से ही परिणमेगा, परंतु वो अजीव कभी नहीं होगा. तो जीव अपने अपने यहाँ तो परिणमन भी सिद्ध किया है, कुठस्थ नहीं है. जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, कैसे? क्रम नियमित है. चाहे वो पर्याय की बात नहीं है, क्योंकि द्रव्य हम उसी को कहते हैं जिसके अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है. गुण पर्याय व द्रव्य हम कहते हैं, तो उसके गुणों का समूह तो है ही है जो एट अ टाइम एक समय में विद्यमान है. परंतु पर्याय जो क्रम से होती है, एक के बाद एक होती है, वो भी अनादि अनंत पर्यायों का जो समूह है वो पूरा प्रवाह निश्चित है. जैसे गुण विद्यमान है सभी, उसको सहवर्ती कहा है, वैसे पर्याय भी निश्चित क्रम से वहां विद्यमान है. किसी अपेक्षा सत हमने जयधवला में बहुत आप थी ना सुबह में, तो वो उसका उपादान कारण वहां विद्यमान है और सर्वज्ञ भगवान ने उसको एक समय में युगपत देखा भी है. तो प्रत्येक द्रव्य की एक एक समय की सुनिश्चित पर्याय है, उस सबको मिलकर हम द्रव्य कहेंगे. उस पर्याय रूप से द्रव्य उत्पन्न होता है, तो यही बात यहाँ कहते हैं. उसमें क्रम नियमित बात सिद्ध होती है, क्रमबद्ध की बात सिद्ध होती है. इसलिए केवल अपने पर्याय रूप से परिणमता ऐसा नहीं कहा. क्रमनियमित ऐसे जो अपने परिणाम है, क्रमबद्ध ऐसे जो अपने परिणाम है, उस पर्याय रूप से वो उत्पन्न होता है. देखो प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवा पोताना परिणामोती उपज तो थको, उत्पन्न होता हुआ ऐसा उसमें शब्द आया है संस्कृत में. जीव छे अजीव नथी एवी रीते, तो क्या जीव में ही क्रमबद्ध है? तो एवी रीते अजीव पण ક્રમબદ્ધ પોતાના પરિણામોથી ઉપજતું થકું અજીવ જ છે, જીવ નથી. એને યહાં જીવ અપને પર્યાયો સે, વો ભી કૈસી પર્યાય? ક્રમબદ્ધ. ઉપર તો લિખા થા સૂત્ર મેં કહેલા, ક્યોંકિ વો નિશ્ચિત હૈ. અજ્ઞાની કે માન્યતા અનુસાર ઉનકી ચાહે જો કોઈ પર્યાય નહીં હો સકતી હૈ. અજીવ જ છે, જીવ નથી, કારણ કે જેમ અભી યહાં વો દૃષ્ટાંત દે રહે હૈ. કંકણ આદિ પરિણામોથી ઉપજતા એવા સુવર્ણને કંકણ આદિ પરિણામો સાથે તાદાત્મ્ય છે. એને દ્રવ્ય કા અપને પર્યાય કે સાથ તાદાત્મ્ય હૈ. ઇસકો કૈસા તાદાત્મ્ય કહા થા આપકો યાદ હૈ? અનિત્ય તાદાત્મ્ય. પર્યાય હૈ ને એક સમય કે લિયે उस रूप एक में एक है, द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही उस समय उस पर्याय रूप से विद्यमान है, उससे भिन्न नहीं किया जाता उसको। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे सुवर्ण को कंकण आदि जो उसके पर्याय है उसके साथ तादात्म्य है, तेम सर्व द्रव्यों ने, ये हर द्रव्य की बात है, सर्व द्रव्यों ने पोताना परिणामों साथे तादात्म्य छे। हम हमारे मान्यता में भले अन्य के साथ तादात्म्य मान लेंगे, शरीर के साथ हम तादात्म्य हो गए, राग के साथ तादात्म्य हो गए, परंतु यहाँ अपने परिणामों के साथ तादात्म्य। आम जीव पोताना परिणामों थी उपजतो हुआ छता, अभी पहले में पहले अपने परिणामों से उत्पन्न होता है ये बताया, और वो परिणाम भी क्रमबद्ध है ये भी बात बताई। ऐसे हुआ छता तेने अजीवनी साथे कार्य कारण भाव सिद्ध थतो नथी, यानी भले वो अपने पर्याय रूप से उत्पन्न होता है परंतु वो अजीव के साथ कुछ कारण कार्य भाव बनता होगा ना, कर्ता कर्म संबंध उसका परद्रव्य के साथ बनता होगा, ऐसी किसी को शंका हो सकती है या अज्ञानी ऐसा मानता भी है। तो कहते हैं अजीवनी साथे उसको तेने कार्य कारण भाव सिद्ध थतो नथी, कारण के सर्व द्रव्यों ने अन्य द्रव्य साथे उत्पाद्य उत्पादक भावनो अभाव छे। ये नया भाव आ गया भी, उत्पाद्य और उत्पादक, उत्पादन शब्द तो हमने सुना है, फैक्ट्री में उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कुछ न कुछ वहां उत्पन्न होता है, उत्पादन। तो उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला, और उत्पाद्य यानी उत्पन्न होने योग्य, दिया लगाते ना हम जैसे किसी भी उसमें खाद्य, अच्छा खाद्य याद आ गया,
क्या क्या
खाद्य, तो उत्पाद्य उत्पादक भाव इसका अभाव है, किसके साथ, अन्य द्रव्यों के साथ। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का ना तो उत्पादक है और ना ही वो अन्य द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, ना स्वयं उत्पाद्य है और ना ही अन्य द्रव्य के लिए उत्पादक भी है। ते इतले कार्य कारण भाव नहीं सिद्ध थता, ये कारण यानी उत्पन्न करने वाला उसको कारण कहा और जो उत्पन्न होना वो कार्य कहा, ऐसा कार्य कारण भाव एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ हो नहीं सकता। तो वो नहीं सिद्ध होने पर अजीव ने जीवनु कर्मपणु सिद्ध थतु नथी, यानी जीव करता और अजीव उसका कर्म यानी कार्य, ये बात तीन काल में नहीं हो सकती। अने ते एटले अजीव ने जीवनु कर्मपणु नहीं सिद्ध थता, यानी जीव और अजीव का एक दूसरे के साथ कर्म कर्ता कर्म संबंध नहीं सिद्ध हुआ है, और ऐसा होने पर कर्ता कर्मनी अन्य निरपेक्षपणे, एटले अन्य द्रव्य थी निरपेक्षपणे, यानी स्वद्रव्य माज सिद्धि हुआ थी। क्या कहना चाहते, कर्ता और कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, दो भिन्न द्रव्यों में नहीं होता, ये बात यहां से सिद्ध हो जाती है। इतने स्पष्ट शब्दों में बताइए, यहाँ पर कहते हैं कर्ता कर्मनी अन्य निरपेक्षपणे सिद्धि हुआ थी, यानी अपने द्रव्य में ही उसकी सिद्धि हो जाने से जीव ने अजीव नु कर्तापणु सिद्ध थतु नथी, माटे जीव अकर्ता ठरे छे। इतनी बात भी निर्णय में ले लेते हैं तो जीव अकर्ता हुए ना, मैं स्वयं अकर्ता हूं, इस बात का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अपने को उसने कर्ता मान लिया है, मिथ्या मान्यता है, मिथ्या मान्य के मान्यता के अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता है। जगत का परिणमन वस्तु स्थिति तो जैसी है वैसी अनादि से ही होती आ रही है और अनंत काल तक ऐसे ही रहेगी, परंतु जब तक यह जीव अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में वो मान लेता है कि मैं परद्रव्यों का कर्ता हूँ, विशेषता अजीव जो पुद्गल द्रव्य है वही उसको इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है और उसका मैं करता हूँ ऐसी उसके अनादि से मान्यता हो रही है। इसी का भावार्थ देखते हैं, सर्व द्रव्यों ना परिणाम जुदा जुदा छे, पोत पोताना परिणामों ना सौ द्रव्यों करता छे। देखो जीव अजीव का करता है नहीं, परंतु एक जीव भी दूसरे जीव का करता नहीं। तो कहते सौ पोत पोताना परिणामों ना करता छे, तेओ ते परिणामों ना करता छे, ते परिणामों तेमना कर्म छे। द्रव्य को यहाँ करता कहा और उसके पर्याय उनका उसका कर्म कहा।
तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य जो है उसको ये पर्याय है, परिणाम यानी उसका जो कार्य है वह जुदा जुदा है। इसलिए ये बात निश्चित होती है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों का करता है। ते वो ते परिणामों ना करता चाहिए, बात बताई ना, अने ते परिणाम परिणामों तेमना कर्म इतले कार्य छे।
आगे कहते हैं निश्चय थी कोई नो कोई नी साथे करता कर्म संबंध नथी। निश्चय थी आरोप थी उपचार थी केवाय कथन में आवे पण रियलिटी में एम छे नहीं। तो कहते निश्चय थी कोई नो कोई नी कर साथे करता कर्म संबंध नथी, माटे जीव पोताना परिणाम नो ज करता छे। ज लगाया हो, पोताना परिणाम कर्म छे। एवी ज रीते एने मात्र जीव की बात नहीं, अजीव द्रव्यों के ऊपर भी यही बात सिद्ध होती है। एवी ज रीते अजीव पोताना परिणाम नो ज करता छे, पोताना परिणाम कर्म छे। आ रीते जीव बीजाना परिणामों अकर्ता छे। एक जीव भी अन्य जीवना नहीं तो अन्य अजीव की भी वही बात होती है। जीव सभी द्रव्यों को दो द्रव्यों में भिन्न कर दिया, जीव और अजीव, और उसमें उन्होंने घटित कर दिया कि अजीव अपने परिणामों का करता है और जीव भी अपने परिणामों का करता है। अब यही बात पहले हम देख लेते प्रवचन और फिर दोबारा उसमें आएंगे।
यहाँ लिखते हैं हवे आत्मानु अकर्तापनु दृष्टांत पूर्वक कहे छे। क्या कहा? प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवा पोताना परिणामोती उपजतो थको जीवज छे अजीव नथी। यानी यहाँ केवल जीव और अजीव की बात करते हुए प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्रता का यहाँ कथन किया गया है और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों का करता है यह बात बताई जा रही। यहाँ परिणाम का अर्थ पर्याय समझना हो और कर्म का अर्थ कार्य ये समझना, और पर्याय का अर्थ भी कार्य है हा? क्योंकि गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। परिणमन हुआ वो कार्य हुआ, और वो कार्य कब होता है? अभिन कार्य कब होता है? कहाँ खो गई है? हाँ बोलो। देखो कार्य तो हर समय होता है, तो विश्व में एक समय में कितने कार्य होते होंगे? अनंत। अरे अनंत 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 है वो तो वास्तव में, क्योंकि एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत द्रव्यों में अनंत अनंत गुण, और एक एक गुण के एक एक समय के एक एक पर्याय। और हम तो समझते कि हम किए बिना कोई कार्य नहीं होगा, तो हम केवली भगवान को कितना मानते हैं। अरे हम था जब ही तो ये सारा इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मालूम है, ऐसा हम मानते हैं। अरे उसमें गुण है कि नहीं, उसमें परिणमन होने की ताकत है कि नहीं? तो यहाँ क्या कहा? निश्चय से पहले क्या बताया था? देखो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ना निश्चय थी, तो निश्चय थी तो ये बात पहले ध्यान में रखो, फिर भले कुछ भी बाद में बोलो। ये भावार्थ में ऊपर से दूसरे लाइन में आखिरी शब्द है ये, निश्चय थी कोई नो कोई साथे, यानी एक द्रव्य नो बीजा द्रव्य साथे करता कर्म संबंध नथी। यानी कोई द्रव्य कार्य करने वाला हो और वह दूसरे द्रव्य का कार्य करे, ऐसा दोनों का संबंध है नहीं। देखो ये जो मूलभूत बात है जैन दर्शन की कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपना अपना परिणाम कर सकता है, ऐसे उसमें ताकत है। और ये बात अगर हमारे सही रूप से ज्ञान में आ जाए तो न्याल हो जाए, ऐसी बात है। तो आज मैंने किसमें पढ़ा था, पद्मनंदी पंचविंशति में, वागो, वागो का अर्थ क्या होता है गुजराती में? वागो ऐसा कुछ शब्द डाला है उन्होंने कि आप जीव ने सू केवू के वह जानता है कि इस विश्व में कोई बात टिकती नहीं, कोई पैसा टिकता नहीं, कोई वैभव टिकता नहीं, कोई आयु टिकती नहीं। इतना जानते हुए भी उसमें क्यों इतने हम क्यों वड़गी जाए छे नहीं साथ ऐसा ले, तो उसके लिए वो शब्द वापरा। कहां पढ़ा मुझे याद नहीं। देखो कैसी बात है, हम जानते हैं ये पैसा हमारे साथ आने वाला नहीं, ये बच्चे मेरे साथ आने वाले नहीं, ये पति मेरा आने वाला नहीं, ये पत्नी मेरी आने वाली, बच्चे नहीं आने वाले, कुछ पैसा अड़का कुछ नहीं आने वाला है, फिर भी उसके लिए हम कितने लालायित होते हैं, कितने उसके मतलब पीछे पड़ते हैं। तो इस जीव को क्या बोलना, ऐसा प्रश्न चिन्ह किया है उसने। ये पद्मनंदी पंचविंशति का उदाहरण है, ये मुझे याद है, लेकिन वो कल बताऊंगा। बहुत बढ़िया है, और आज तो हम सुबह उसी लेके गए थे ना, तब तो ऐसा फील हुआ। तो क्या बात है देखो, तो यहां कह रहे हैं प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवं पोताना परिणाम थी उपजतो तको जीवज छे अजीव नथी। यानी यहाँ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों का करता है, यानी अपने अपने पर्यायों का करता है, और वो भी परिणाम कैसे हैं, तो कहते हैं क्रमबद्ध है। ये एक मिनट, ये अभी हमने जो देखा था तो टीका में तो क्रमबद्ध ऐसा शब्द तो आया है, संस्कृत ओरिजिनल देखो, ये क्रम नियमित है। अच्छा हाँ, जो पाठमा संस्कृत तावत शब्द पड़ियो छे ने, तावत एटले प्रथम तो, अर्थात मूल मा वात आ छे के शू के जीव क्रमबद्ध एवा पोताना परिणाम थी उपजतो तको जीवज छे अजीव नथी। आहा हा, जीव मा प्रत्येक समय जे पर्याय थाय ते क्रमबद्ध छे, तेमा त्रिकाल जे जे पर्यायो थाय छे ते बधी क्रमबद्ध थाय छे, एम कहे छे। जेम माळा मा मणका पोतपोताना स्थान मा रहेला एक पछी एक होय छे, ते मणका आडा अवळा न होय, पछीनो मणको आगळ न आवी जाय अने आगळनो मणको पाछळ न चाल्यो जाय, तेम जीवमां जे समय जे पर्यायनी उत्पत्तिनो काळ होय ते समय तेज पर्याय उत्पन्न थाय छे। क्या कहा? जीवमां जे समय जे पर्यायनी उत्पत्तिनो काळ होय ते समय तेज पर्याय उत्पन्न थाय छे। आम जीवननी बधी पर्यायो पोतपोताना काळे क्रमबद्ध उत्पन्न थाय छे, आड़ी अवड़ी नहीं। हवे आमा केटलाकनो केटलाकने वांदा छे, एम के पर्याय एक पछी एक क्रमसर थाय ए तो बराबर, पण आना पछी आज थाय एम क्रमबद्ध नथी एम तेओ कहे छे। अभी अगर ऐसे किसी की मान्यता है तो कौन सी भूल कर रहा है, ये तो न कि वो क्रमबद्ध को नहीं मान रहे। फिर से ये मैं पढ़ूंगा, देखो हवे आमा केटलाक ने वांदा छे, एम के पर्याय एक पछी तो क्रमसर थाय वो तो हमको मान्य है, ये तो बराबर छे, पर आना पछी आज थाय यानी दूसरी कोई नहीं होगी, वही होगी जो होनी है वही होगी, एम क्रमबद्ध नथी ऐसा जिनके ऑब्जेक्शन है वो किस बात में भूल कर रहे हैं, प्रेरणा में ना बता पाएंगे। स्वतंत्रता की बात नहीं है, हाँ ख्याल में नहीं आ रहा। हाँ जी जोर से, द्रव्य को नहीं जान रहा। अच्छा आप क्या कहते हैं? हाँ बेन, बहुत अच्छा। देखो देखो अभी क्या कहते हैं, सर्वज्ञ ने क्या जाना है, तीन काल और तीन लोक के सारे द्रव्य गुण पर्यायों को जाना है। तो उन्होंने जाना है, यह बात तब साची होगी कि जो क्रम से बात चलेगी, और हमने जो जब जिस समय जो होना होगा एक के बाद एक होगी, बराबर है, पर इसके बाद यही होगी ऐसा नहीं है। जो होनी हो सो होगी, हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा होगी, कुछ नहीं। देखो हम परद्रव्यों के परिणति की बात तो सोचते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। यहां तो हम अपनी पर्यायों को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो हमने एक भी सर्वज्ञ को नहीं माना। ख्याल में आया? आपने कहा था द्रव्य को नहीं माना, किसने बताया? अच्छा आपने बताया था, किसी ने तो बताया था। देखो देखो जो गुरुदेव कह रहे हैं ना बातें, वो बिल्कुल मतलब बहुत उंडान में सोचने जैसी है। क्या कहा? एम के पर्याय एक पची एक क्रमसर था, ये तो बराबर, पर आना पची आज था, एम क्रमबद्ध नथी। हाँ तो उस जीव ने सर्वज्ञ को माना ही नहीं। भाई तारी आ मान्यता यथार्थ नथी। द्रव्यमा जे पर्याय जे काले थवा योग्य होय, तेज पर्याय त्रे काले क्रमबद्ध थाय छे जो ने। अहीं टीकामां शुं कहे छे? जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो जीवः एव न अजीवः। क्रम नियमित शब्द छे एटले के क्रम तो खरो अने क्रम थी नियमित निश्चित अर्थात द्रव्यमा आ समय थवा योग्य आज पर्याय थशे एम निश्चित छे। तुम क्रम को बद्ध कहो या क्रम को नियमित कहो, अर्थ तो दोनों का एक ही होता है। भाई तू भगवान सर्वज्ञ देव ने माने छे के नहीं? आई ना बात? त्रण काल त्रण लोक ने एक समय में युगपत प्रत्यक्ष जाननार भगवान सर्वज्ञ देव ने जो तू न माने, जो तू माने छे तो बधी पर्यायो द्रव्यमां प्रत्येक द्रव्यमां क्रमबद्ध थाय छे एम सिद्ध थई जाय छे। और हमने उसी को नहीं माना तो हमने सर्वज्ञ को नहीं माना। भगवान सर्वज्ञ देव द्रव्य नहीं त्रणे कारणी पर्यायो ने युगपद जाने छे, एनो अर्थ जे थयो के द्रव्य नी त्रणे कारणी पर्यायो ने पर्यायो नो क्रम निश्चित छे। आहा द्रव्यमां जे समय जे पर्याय थवानी होय ते समय तेज पर्याय थाय एम समस्त पर्यायो पोतपोताना समय क्रमबद्ध उत्पन्न थाय छे। समझाणो काय? हा पण आवू बधु क्रमबद्ध माने तो धर्म करवा माटे पुरुषार्थ करवानो क्यां रह्यू? लियो आवो केटलाकनो प्रश्न छे। क्या कहा? अगर हमने ये नक्की किया कि जिस समय जो पर्याय होनी से होगी क्रमबद्ध में है सो होगी, ऐसा हम मानेंगे तो फिर धर्म करने के लिए पुरुषार्थ भी कहाँ करने का रहा? वो तो जब होने का है सो होगा। आवो केटलाक नो प्रश्न छे एम के क्रमबद्ध में धर्म थवानो छे ते थशे। भाई एम आ वात नथी बापू, तू एक वार सांभळ। क्रमबद्ध नो निर्णय करनारनी दृष्टि त्रिकाळी शुद्ध એક નિજ ન્યાયક ભાવ માત્ર વસ્તુ આત્મા પર જ હોય છે. ભાઈ, ન્યાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ જાય ત્યારે જ કર્મબદ્ધનો યથાર્થ નિર્ણય થાય છે. આ વાત છે. દેખો, યા દો બાતે બતાઈ હૈ. એક તો સર્વજ્ઞ કો જિસને માના હૈ, એક બાત. ઓર દૂસરી બાત ક્યા હૈ? અપના જો ન્યાયક સ્વભાવ હૈ ઉસ પર ઉસકી દ્રષ્ટિ જાયેગી, યાની ઉસકો વો માનેગા તો જો ક્રમબદ્ધ કા નિર્ણય યથાર્થ હોગા. ખ્યાલ મેં દોનો બાતે સાયમલ્ટેનિયસલી હોતી હમને દેખા થા, ફિર ભી કથન મેં તો અલગ આયેગા ના. તો હમને ક્યા કહા? દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી યથાર્થ શ્રદ્ધા, સાત તત્વો કી યથાર્થ પ્રતીતિ જો ભી હૈ, ઓર આત્માનુભૂતિ, ઓર એક હૈ સ્વપર ભેદ, સ્વપર કી માન્યતા. એ ચારો હી બાતે એક સમય મેં હોતી હૈ. તો જબ આપને સર્વજ્ઞ કો માના ક્યા, યા જ્ઞાન સ્વભાવી યા ન્યાયક સ્વભાવી આત્મા કો ઉસને જાના, ઉસકે ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ, યથાર્થ નિર્ણય હો ગયા, અનુભૂતિ હોઈ, તો ઉસકા ક્રમબદ્ધ કા નિર્ણય સહી હુઆ. જબ તક યે દોનો મે સે એક ભી નહીં, યાને દોનો હી નહીં હોતે, તબ તક વો કહેને પૂરતા ક્રમબદ્ધ ઉસને માના હૈ. વાસ્તવિક સચ્ચા ઉસકા માનના હૈ હી નહીં. ક્યા લિખા હૈ થર્ડ લાઇન મેં? ન્યાયક ભાવ પર દ્રષ્ટિ જાય ત્યારે જ ક્રમબદ્ધનો યથાર્થ નિર્ણય થાય છે. એવી આ વાત છે. ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય પર્યાયના આશ્રય થતો નથી. યે મૂલ મેં મૂલ બાત ધ્યાન રખના ભાઈ. ક્યા કહા? પર્યાયના આશ્રય થતો નથી, પણ ત્રિકાળી ન્યાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ જતા થાય. ક્યુકે હમ તો હંમેશા કહેતે હૈ, ક્યા હો ગયા સબ? અરે ગિર ગયા ભાઈ, ગિર ગયા. હા, વો તો ક્રમબદ્ધ મેં હોના થા સો હુઆ. એ સબ લોગ બોલતે કબ? કે જો પર્યાય હો ચુકી હૈ, અભી ક્યા પાયર ટૂટના થા, કોણ ક્યા કર સકતા હૈ. એસા તો કહે રહે, ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય પર્યાયના આશ્રય થતો નથી, પણ ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય ત્રિકાળી શુદ્ધ એક ન્યાયક તત્વના આશ્રય થાય છે. આ પ્રમાણે ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય કરનારને ન્યાયક સ્વભાવની આત્માના આશ્રયનો પુરુષાર્થ થતો હોય છે, અને એનું જ નામ ધર્મ છે. સમજાણું કાંઈ? આહા, ક્રમબદ્ધનો યથાર્થ નિર્ણય કરનારને તો કરતા બુદ્ધિ ઉડી જાય છે. તો કરતા બુદ્ધિ ઉડી જાય છે તો કઈ બુદ્ધિ આવી જાય છે? હા નલિનભાઈ, એની કરતા બુદ્ધિ ઉડી જાય છે તો કઈ જ્ઞાતા બુદ્ધિ આવી જાય છે. ખ્યાલ બરાબર? કે પરકા મેં કર સકતા હું એસે નહીં, મેં જાન સકતા હું, બસ જાનના હી મેરા કાર્ય હૈ. ક્યા કહા? ક્રમબદ્ધનો યથાર્થ નિર્ણય કરનારને તો કરતા બુદ્ધિ ઉડી જાય છે, અને સ્વભાવ પ્રતિ સમ્યક પુરુષાર્થ જાગૃત થાય છે. આવી આ વાત છે. એને અમારા પુરુષાર્થ ક્યાં રહા, ક્યાં રહા, ક્યાં રહા? અરે હે ને, સ્વભાવ કે પ્રતિ જો અભી પુરુષાર્થ જાગૃત હુઆ હૈ, યાને મેં એસા હી હું એસી જો માન્યતા હો રહી હૈ, તો એ સ્વરૂપ કી રચના હો રહી ને કે ભાઈ મેં એસા હી હું, વહ અનંત પુરુષાર્થ હૈ. જો અહીં પહેલા જીવની પર્યાયોની વાત કરી છે, જીવ જાણનાર ન્યાયક તત્વ છે ને, પોતાની જે પર્યાયો ક્રમબદ્ધ થાય તેનો જાણનારો છે ને, માટે જીવની વાત પ્રથમ કરીને પછી અજીવની વાત કરી છે. અજીવમાં એટલે જડમાં પણ પર્યાયો તો બધી ક્રમબદ્ધ થાય છે, પણ જડને કંઈ નથી, અર્થાત જડ કંઈ જાણતું નથી, જીવ એનો જાણનારો છે. આ જીવને પોતાનું જ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે તે જાણે કે પોતામાં જે ક્રમબદ્ધ પર્યાયો થાય છે તેનો હું જાણનાર છું, અને જડમાં અજીવમાં જે ક્રમબદ્ધ પર્યાયો થાય છે તેનોય હું જાણનાર છું, કરતા છું. એમ નહીં લિખા ને જ્ઞાતા થાય છે. આહા, ત્રિકાળી શુદ્ધ એક ન્યાયક સ્વભાવની જેને અંતરદૃષ્ટિ થઈ છે તે જીવને પર્યાયમાં રાગાદી ભાવ જે ક્રમબદ્ધ થાય છે તેનો તે કરતા થતો નથી, પણ માત્ર તેનો જ્ઞાતા સાક્ષી રહે છે. અહો, ધર્મી પુરુષની આવી કોઈ અલૌકિક અંતરદશા હોય છે, પરંતુ અજ્ઞાની જીવ પોતાને નિજ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ માત્ર આત્માનું ભાન નહીં હોવાથી એને અપને સ્વભાવ કા જ્ઞાન નહીં હોને સે જે જે રાગાદી પર્યાયો ક્રમબદ્ધ પ્રકટ થાય છે તેનો તે કરતા થાય છે, અને તેથી તે દીર્ઘ સંસારમાં રખડી મરે છે. એ અજ્ઞાની કી બાત હૈ. શું કહીએ ભાઈ, તારો અનંત અનંત કાળ ચતુર્ગતિ પરિણામ પરિભ્રમણમાં ગયો છે. અરે 84 લાખ યોનિમાં પ્રત્યેક યોનિમાં ભગવાન તું અનંતવાર ઉપજો, યે હમ કભી સોચતે હી નહીં હૈ. મેને બહોત જગહ દેખા હૈ કે એસે આપને આસપાસ કઈ મચ્છર મંડરાતા હો તો ઉસકો ફટક કરકે માર દેતે, તબ તો એસા લગતા હૈ કે યે જીવ ક્યા કર રહે હૈ. અરે મેં ચૂપચાપ બેઠો, મેરા આગે ખૂન ચૂસતા હૈ. અરે પ્રભુ, તેરા તો એક બૂંદ ચૂસા હૈ, તુને તો ઉસકી જાની લે લી ના. ખ્યાલ મેં આયા? તો યે હમ સોચીએ કે યહાં ક્યા લિખા, 84 લાખ યોનિમાં અનંતવાર પ્રત્યેક યોનિમાં જન્મ્યો છે. એ 84 લાખ યોનિ અને ક્યાં હોતા હૈ કે જન્મ સ્થાન હોતા હૈ. અભી ઉદય હોતી હૈ ના, वो कहां लकड़ी में पैदा होती है, दीवार में पैदा होती है, तो वो उसकी वो यहाँ जन्म स्थान है. अभी मच्छर जो है पानी में, वो जो इसमें आते हैं उधर पैदा होते हैं, वो एटमॉस्फेयर जिसको हम समूर्चन जीव कहते हैं. ख्याल में कितनी बात बताई. देखो 84 लाख योनिमा प्रत्येक योनिमा भगवान तू अनंतवार उपजो, પણ અરે એને કદી પોતાનો વિચાર્ય કર્યો નથી. અરે રે, ક્યાં ક્યાં એને અવતાર કર્યા એટલે જન્મ લીધા. નિજ સ્વરૂપના ભાન વિના નરકમાં, ઢોરમાં, કીડા કાગડા કંતવામાં અને પૃથ્વી પાણી ને વનસ્પતિ આ એકેન્દ્રિયમાં, અરે રે, એને અનંત અનંત વાર અવતાર કર્યા છે. ક્યા કહા? તો મેં કહેતા હું, એ નાયગારા ફોલ હૈ ના, તો ઉસકે પાણી મેં આપના જન્મ હુઆ હોગા કે નહીં? તો વહાં જો ગિરતે હૈ તો કિતને લોગ દેખને કે લિયે જાતે. હા, ક્યા લિખા દેખો, યે બાત હમ સોચતે નહીં ના કભી. ક્યા લિખા દેખો, થર્ડ લાઈન મેં લિખા ના, એને કદી પોતાનો વિચારે કર્યો નથી કે મેં ભી એસી પર્યાય મેં આયા હું, આ ચુકા હું એક બાર નહીં, દો બાર નહીં, અનેકો બાર. તો અભી નીચે સે થર્ડ લાઈન મેં કહે રહે, દેખો, પૃથ્વી પાણી ને વનસ્પતિ આ એકેન્દ્રિયમાં, અરે રે, એને અનંત અનંત વાર અવતાર કર્યા છે. અરે એને જે પારાવાર, એ પરાવાર હોય ને, પારાવાર દુઃખ કષ્ટ દુઃખ સયા, તેને કેમ કરીને કહીએ ભાઈ? અહીં આચાર્ય દેવ તારા દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય બતાવે છે. કહે છે, પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ પોતાના પરિણામોથી ઉપજતો થકો જીવ જ છે, અજીવ નથી. આ મૂળ મુદ્દાની વાત છે. શું કે ભગવાન આત્મા અનંતગણનું વાસ્તુ પ્રભુ વસ્તુપણે તો પર્યાયથી ભિન્ન છે, છતાં તેનું પર્યાયમાં જે પ્રણમન બદલવું થાય છે એમાં બદલતી જે અવસ્થાઓ સમય સમય પ્રકટ થાય છે તે કહે છે ક્રમબદ્ધ થાય છે, આગી પાછી કે આડી અવળી નહીં. જેમ મોતીની માળામાં પોતપોતાના સ્થાનોમાં પ્રકાશતા મોતી જો આગા પાછા થાય તો માળા તૂટી જાય, તેમ દ્રવ્યમાં પોતપોતાના અવસરોમાં પ્રકટ થતી પર્યાયોમાં જે ક્રમબદ્ધ થાય તો દ્રવ્ય જ ના રહે, એટલે કે પોતપોતાના અવસરોમાં પ્રકટ થતી પર્યાયો આગી પાછી કે વહેલી મોડી થવાનું જે કોઈ માને તો તેની એ માન્યતા વિપરીત છે, મિથ્યા શ્રદ્ધાન છે। વાસ્તવમાં દ્રવ્યમાં જે પર્યાય જે સમય થવાની હોય તે સમયે જ તે પર્યાય પ્રકટ થાય છે। વર્તમાન થવાની હોય તે વર્તમાન થાય છે ને ભવિષ્યમાં થવાની હોય તે ભવિષ્યમાં એના કાળે થાય છે। આવી ઝીણી વાત છે ભાઈ। દેખો એને જો ટાઈમ પે જિસ સમય જો પર્યાય હોની વહી હોગી ઉસકા ક્રમ આગે પીછે નહીં હોગા। જો એક વખતે એક છોકરાએ બીજા છોકરાને વાત વાતમાં ગુસ્સે થઈને ગાલ ઉપર જોશથી થપ્પડ લગાવી દીધી, પછી કોઈ સમજુ માણસ એને ઠપકો આપ્યો તો કહે એ તો જે સમય જે થવાનું હતું તે થયું છે, મેં એમાં શું કર્યું છે? એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું શું કરી શકે છે? લ્યો આવું એને કહ્યું, યાની એવો સિદ્ધાંત પડકર ઉલટે માર્ગ પર ચાલ રહે। પણ ભાઈ એની એ વાત બરાબર નથી। જળમાં શરીરમાં જે ક્રિયા તે સમય થવાની હતી તે થઈ તથા તે જળની ક્રિયા છે એ તો યથાર્થ છે, પરંતુ ક્રમબદ્ધ છે। હિંસાનો મારવાનો ભાવ થયો તે કોને કર્યો? તે ભાવનો અજ્ઞાની જીવ અવશ્ય કરતા છે। કોઈ કરતા થઈને પરિણમે છે, પરિણમે અને જે સમય જે રાગ થવાનો તો તે થયો એમ ક્રમબદ્ધનું નામ લે તો એ તો સ્વચ્છંદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। અભી એક બાત જરા ધ્યાન રખના કે ઉસકો ગુસ્સા આના ઓર ઉસને એસા કરના યે ભી ક્રમબદ્ધ થા, લેકિન વો ક્રમબદ્ધ કી આડ લેતે હુએ મેને કુછ નહીં કિયા જો હોના થા સો હુઆ એસા કહેના યે સ્વચ્છંદતા હૈ। ખ્યાલ મેં? તો ક્યાં કહે રહે? એ તો સ્વચ્છંદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એને ક્રમબદ્ધનું સાચું શ્રદ્ધાન જ નથી। બાપુ આ કઈ સ્વચ્છંદ પોષવા માટે વાત નથી, પણ સ્વભાવના આશરે સાચો નિર્ણય કરી સ્વચ્છંદ મટાડવાની આ વાત છે। ભાઈ ભગવાનની વાણીનો ચારે અનુયોગનો સાર એકમાત્ર વિતરાગતા છે। પંચાસ ટીકાએ ગાથા 172ની ટીકામાં કહ્યું છે, વિસ્તારથી બસ થાઓ જયવંત વર્તો વિતરાગપણું, કે જે સાક્ષાત મોક્ષ માર્ગનો સાર હોવાથી શાસ્ત્ર તાત્પર્યભૂત છે। આહા આ વિતરાગનો વિતરાગતા કેમ પ્રગટે? કે જીવને જ્યારે પર્યાય બુદ્ધિ મટીને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે વિતરાગતા પ્રગટે। આહા ત્રિકાળી શુદ્ધ એક ન્યાયકની દ્રષ્ટિ થાય એ એક જ વિતરાગતા પ્રકટ થવાનું કારણ અને સાધન છે। યાને વિતરાગતા ભી આત્મા કા અનુભવ કિયે બિના હોને વાલી હૈ નહીં, તો એટલે કહેતે વિતરાગતા પ્રકટ કરને કે કોણ સા ઉપાય હૈ, સાધન ક્યા હૈ? તો કહેતે કે આપણે ત્રિકાળી સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ કરે ઓર ઉસી મેં લીનતા કરે, વહી વિતરાગતા પ્રકટ કરને કા ઉપાય હૈ। બાકી બાત હમ કલ દેખેંગે। જાવાની કે જ્ઞાન તૈ સુજે લોકાલો સોવાણી મસકણમો સદા દેતો।